आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि आने वाली दहाइयों में तवानाई के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाना भारत के क्लीदी सिफारती मकासिद में से एक है। आज अजीम इनकलाबी रहनुमा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीदी दिवस पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादी के लिए इन सोरमाओं की निडर जद्दोजहद और इंसाफ से मुल्क के अवाम को तहरीक मिलती रहेगी। आरएसएस अपने क्याम के 100 साल मुकम्मल होने के तनाजुर में इस साल विजय दशमी पर समाजी हमाहंगी और कौमी इत्तेहाद को फरोग देने के लिए कई राबता प्रोग्रामों का एहतमाम करेगा। बास्केटबॉल में भारत ने मनामा में मेजबान बहरीन को हराकर 2025 के FIBA एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स का मुंबई इंडियंस से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी मईशत के तौर पर भारत को तवानाई के ताल्लुक से वसीतर और मुतनव्वे ताल्लुकात कायम करने चाहिए। मुंबई में एक मीडिया तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि दहाइयों से आलमगीरियत की सफात को का तस्करा सुनने के बाद आज दुनिया सनती पॉलिसियों, बरामदात पर कंट्रोल और महसूलात के ताल्लुक से महाजाराई की हकीकत का सामना कर रही है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आने वाली दहाइयों में तवानाई के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाना भारत के अहम सिफारती मकासिद में से एक है। वजीर खारजा ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के नजरिए का इतलाक मुल्क की खारजा पॉलिसी पर भी होता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत उन चंद मुल्कों में से एक है जो रूस और यूक्रेन, इसराइल और ईरान, जमहूरी मगरबी ममालिक और ग्लोबल साउथ नीज ब्रिक्स और क्वाड मुल्कों से एक साथ बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मजीद कहा कि दिफा और सिक्योरिटी जैसे हसास शोबों में भी भारतीय डिप्लोमेसी में इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि हमारी मुसल्लह अफवाज और कारोबारी अफराद दोनों ही ज्यादा से ज्यादा मुमकिन हद तक साझेदारों का इंतखाब कर सकें।
टू इंश्योर दैट वी हैव अ फेवरेबल एनर्जी एनवायरमेंट फॉर कमिंग डेकेड्स इज अंडरस्टैंडेबली वन ऑफ आवर की डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स। Beyond fossil fuels, it extends to developing and deploying renewables on a large scale, as well as exploring the potential of small modular reactors. The world of AI and the world of EV are going to generate much higher energy demands on top of the natural needs of greater prosperity. If data is the new oil, then data centers are the new refineries, and they will need to be powered.
कौम आज भारत की जद्दोजहद आजादी के तीन अजीम इनकलाबी सोरमाओं शहीद आजम भगत सिंह, शोराम राजगुरु और सुखदेव थापर को खराज अकीदत पेश कर रही है, जिन्हें 1931 में आज ही के दिन लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। इन बहादुर मुजाहिदीन आजादी पर लाहौर में 17 दिसंबर 1928 को बरतानिया के पुलिस ऑफिसर जेपी सॉन्डर्स को कत्ल करने की पादाश में मुकदमा चलाया गया था और फिर इसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की कुर्बानी भारतीय अवाम के जहनों में महफूज रहेगी और आजादी नीज इत्तेहाद के नजरियात को सरबुलंद रखने के लिए हमेशा कौम को तरगीब फराहम करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अजीम मुजाहिदीन आजादी के योम शहादत के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने आजादी और इंसाफ के हुसूल के लिए उनकी बेखौफ जिद्दोजहद को याद किया।
आज इतने वर्षों बाद भी अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की गाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर। शहीद दिवस पर मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी वीर वीरांगनाओं को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भावांजलि अर्पित करता हूं।
आज अजीम मुजाहिदे आजादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनके योम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। सोशलिस्ट सियासी रहनुमा डॉक्टर लोहिया आज ही के दिन 1910 में उत्तर प्रदेश में अकबरपुर में पैदा हुए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर आजमूदाकार रहनुमा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि डॉक्टर लोहिया एक निडर मुजाहिदे आजादी और समाजी इंसाफ के अलमबरदार थे।
राम मनोहर लोहिया पिछली शताब्दी के महान विचारक, जिनके चिंतन का प्रभाव आज के हिंदुस्तान की राजनीति पर कहीं न कहीं नजर आता है। 1942 हिंद छोड़ो ये आंदोलन अपनी तीव्रता पर पहुंचा और ऐसे समय उस आंदोलन की बागडोर संभाली थी। राम मनोहर लोहिया देश को बचाने के लिए जेलों में भी सत्याग्रह करके पहुंचते रहे और उस कालखंड की युवा पीढ़ी के मन में वो प्रेरणा का स्रोत बन गए।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा की रिहायशगाह पर मुबैना तौर पर नकद रकम बरामद किए जाने के मामले में महकमा जाति इंक्वायरी रिपोर्ट कल रात अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय ने ये इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बाजाब्ता पैगाम रसानी की जानकारी दी गई है और ये कहा गया है कि भारतीय करेंसी के 4 से 5 अधजले अंबार पाए गए। जुमे को एक बयान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महकमा जाति इंक्वायरी शुरू की है और मस्कूरा जज का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट करने की तजवीज है। अदालत आलिया की वेबसाइट पर अपलोड की गई 25 सफात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा की रिहायशगाह पर आग बुझाने की कार्रवाई के वीडियो और तस्वीरें भी शामिल हैं। ये वाकया 14 मार्च को होली की रात पेश आया था और इस दौरान नकद रकम बरामद की गई थी। अपने जवाब में जस्टिस वर्मा ने कहा है कि ना तो उन्होंने और ना ही उनके कुंबे के किसी फर्द ने कभी भी स्टोर रूम में कोई नकद रकम जमा रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी रिहायशगाह पर नकद रकम बरामद किए जाने के इल्जाम बजाहिर उन्हें फंसाने और उन्हें बदनाम करने की साजिश है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने इस साल अपने क्याम के 100 साल मुकम्मल होने के तनाजुर में राबता कायम करने के कई प्रोग्रामों का मंसूबा बनाया है। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले ने आज बेंगलुरु में संघ की अखिल भारतीय सभा की 3 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई बाजाबता जश्न नहीं होगा और इस साल विजय दशमी पर योम तासीस के मौके पर मुख्तलिफ राबता प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि समाजी हमाहंगी और कौमी इत्तेहाद को फरोग देने के लिए सबसे निचली सतह पर अवामी राबतों के प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा।
Our aim is to reach every mandal or a basti. This has been our target. And next 6 months we are expecting to achieve this before the next Vijay Dashmi, which is our target. This year has served as a preparatory year for us. Preparatory year in the sense one is expansion of the organizational activities, consolidation, improving the quality of the work and also reaching out to various segments and preparing for the centenary year to expand and emphasize the activities that we have already been taking up but giving a special focus on the same.
नौजवानों के उम्र और खेलों के महकमे के वजीर डॉक्टर मनसुख माडविया ने कहा है कि फिट इंडिया तहरीक को कामयाब बनाने के लिए आवाम को अपने रोजमर्रा के मामूलात में बाकायदगी से वर्जिश और साइकिलिंग को शामिल करना चाहिए। भारत की बास्केटबॉल टीम ने कल रात मनामा में मेजबान बहरीन को सनसनीखेज तौर पर 81-77 से हराकर 2025 के मर्दों के FIBA एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत ने खेल के आखिरी लम्हात में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। सहपहर 3:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आईपीएल टूर्नामेंट के कल पहले मैच में कोलकाता में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आने वाली दहाइयों में तवानाई के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाना भारत के लिए क्लीदी सिफारती मकासिद में से एक है। आज अजीम इनकलाबी रहनुमा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीदी दिवस पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादी के लिए इन सोरमाओं की निडर जद्दोजहद और इंसाफ से मुल्क के अवाम को तहरीक मिलती रहेगी। बास्केटबॉल में भारत ने मनामा में मेजबान बहरीन को हराकर 2025 के FIBA एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है और IPL क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा जबकि चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।